ஜெபம். நல்ல பாபா जब जब विपत्तियां आई तब आदमी एक बार कृष्ण गाय को चराते हुए सभाओं के साथ में अंडी बनने कंस ने अपना दूध भेजा कि इनको मार डाल, आग लगाओ, गाय मर जाए, कृष्ण तो उनके दिल में ही मर जाए। आग लगी बड़ी भयानक, गाय चलते चलते कृष्ण को कुछ पीछा छोड़ करके आगे बढ़ गई और वो ऐसे विकट बन पहुंची जहां पर सारकंडे सूख गए थे, उसमें हाथी दूध और उसमें आग लगा, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया, गाय टकर में लगी और फिर सखा लोग जो खोलते हुए आ रहे थे कृष्ण से बिना पूछे हुए गायों को बोले उस सरकंडे के बन ले फंस आज ऐसी चारों तरफ क्षण भर में इधर से उधर हवा ने उनको इधर उधर चला, बचने का कोई उपाय नहीं। उस समय सामने विकल्प होकर के हाथ जोड़े, कृष्ण राम महाबाहु अब जल्दी से हमारी रक्षा करो। सखा लो कंठित होकर के सामने एक क्षण में कृष्ण आए, बोले अपनी आंखें मुद लो। क्यों मुद लो? उनकी भावना ये थी मुझे आप खाते हुए देखेंगे तो जसोदा मैया के यहाँ नालिश कर दे और तब जसोदा मैया मुझे मारे ही जाते। एक बार हम लोगों ने कह दिया मिट्टी खाता है, जसोदा मैया ने उसका मुख फाड़ करके देखा, सचू तुम मिट्टी खाता है, पेट खराब हो जाएगा, रोग हो जाएगी और तुम मिट्टी खाता है? मैया मैंने नहीं मिट्टी खाता, मिट्टी नहीं। अच्छा पकड़ सकते देखा अपनी विश्व ब्रह्मा ब्रह्मांड उनके कितने कितने ब्रह्मा शंकर महेश सब उनके आंखें बंद पूर्वज को बुला ये क्या हुआ, तू सब ने देखा न क्या देखा? अरे कुछ नहीं, ये तो नजर लगी है, तुम गैया का दान करो और काली गाय की पूंछ और गोबर और मूत्र मिला करके इसका अभिषेक करा दो, दान दक्षिणा दे दो, सब ठीक हो जाए। कभी नहीं देखा नहीं ये भगवान तो किस प्रकार से रक्षा की, उनको काली को दमन करके सब लोग रात हो गई, छठी करा नहीं पहुंच सके, पासी के जंगल में लोग सो गए और कंस के अंचलों में आग लगा दी। उस समय कृष्ण ने वैसे ही किया, आपको जैसे अमृत होता है ऐसे उन्होंने सबकी रक्षा कर दी। वो कह रहे हैं दवा में वाद बरसा मूसलाधार बस बस रही थी, इंद्र अपनी पूजा ना पा करके वनवासियों ने कृष्ण के परामर्श से गोवर्धन की पूजा की और इसे इंद्र अप्रसन्न हो गया, उस ग्वाली की चौकड़ी को मैं दिखला दूंगा, उसको भी और ब्रज के सब लोगों को पानी में डुबा दूंगा, सब दिन तक मूसलाधार वर्षा होती है। और कृष्ण ने छत्र की बांधी उसको उठाया और सबको उसी में बुलाया, गाय को लाखों करोड़ों ब्रजवासियों को सात दिन तक। फिर इंद्र को पता चला कि ये तो सही भगवान ने उनके चरणों में दिए अभिषेक किया, उसमें भी रक्षा की। वृक्ष विश्वासू बैल का रूप धारण करके आया था का उनको मारने के लिए और प्रतिपाटी स्थल आ रहे थे, केली आया चाहे थे ही सब अबासुर बकासुर ये सब आए रक्षा की। मृत्यु जहां उन लोगों की होने वाली जरूर थी प्रतिपाटियों की, ओ कृष्ण ने सबकी रक्षा। और इस समय हम डूब रहे हैं महासागर में, बिना के जल्दी से रक्षा करो, ये भाव है। और समय तो तुमने रक्षा की, यदि इस समय नहीं रक्षा की तो इस समय मरणांत धर्म होगा, जरूर मरे। मां कृष्ण इस प्रकार से कृष्ण की वीरता को उनकी प्रतिभा को स्मरण करते थे और कृष्ण कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसका स्मरण करते 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 उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, प्रेम में विलीन हो सके और वो मुक्त हो गए। इन्होंने देखा कि अद्भुत प्रेम से ये नहीं जानते हैं कि ये कृष्ण है, स्वयं भगवान है और अपना पुत्र मान करके मोहित हो गए। कुछ संतान देने की चेष्टा की, उनको उठाया चेतन था, फिर उनको याद है नंद बाबू ठीक होते थे काम सही 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 बात होती है मुकुंद पर सबा सिंह कृष्ण के चरण की मैं जाता हूँ अपने मन को भुलाने के लिए कृष्ण की स्मृति को दूर कर नंदन नंदे सुखमो सुकुमार उनके पैरों के चिन्ह और स्मरण होता कृष्ण से ये जमुना के खाट में आप खेलता था ब्रज में सदस्य खेलता था ऐसा कुछ प्रेम नहीं जिसके नीचे वो खेलता नहीं और गिरिराज जी का ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर कृष्ण नहीं है सदस्य जाकर पिता था उनका खेलना हंसना सुनना सब की याद आने लगे भोजन जी देखो तो कुत्ता तुम समझते हो हमारा बेटा कहता था कंस का था नहीं था हजार हाथियों का पर्व में था हजार कैसा पर्व जरासंध अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था कि कुछ चाहता था कि हमारी बेटियों का स्वामी भगवान हो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया कंस की परीक्षा करने की और कंस मथुरा से और वो महाबल की तरफ में सारे ले थे जरासंध सेनाओं के साथ यहीं से हाथियों के पैर पकड़ कर और घुमा करके फेंका उनकी सेना पर ये बहुत मजबूत है भगवान का विश्वास नहीं है। अब उन्होंने अपनी लड़की के साथ में सीता दी दस हजार साथियों का बल और लीला में ही लीला में जहां पर वो बैठा था उसको वहां पर कृष्ण सिंह की तरफ में पहुंच गया और उसको पकड़ा और उसको नीचे झटका झटका दिया गया उसके ऊपर में ऊपर वही छोटा सा और वो मर गया। कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुमसे खेलता रहा यदि खेली में मर गया तो मैं क्या करूं तो उसको लीला में ही से मार डाला ये कथा जिसे हमारा बेटा साल रहे महाकाल धनु जग की इहारा जैसे हाथी मतवाला हाथी एक गन्ने को ऐसे पकड़ करके मुख में खा लेता है ऐसे धनी से जगह के समय में तीन ताप मैंने कम से कम तो 30-35 हाथ लंबा वज्र का बना हुआ धनुष को लीला में उठा लिया और उसको बसन क्या करते ही वो टूट गया हम भगवान इस प्रकार से प्रलंबासुर को झेंकासुर को तृणावस को बका गया सब सैनिकों को उसने खेल खेल में मार डाला ये कहते हुए हाथ उनसे राज नहीं गया प्रेम चुप हो गए शांत मानो कुछ बोल नहीं पा उसमें उद्धव जी कहते हैं अहम सांत्वना देने के लिए ठंड ने विचार किया उन विलाप करते करते बड़े तड़प रहे उनको कुछ सांत्वना के दो आप वाक्य तो देने के लिए देखो मैं तो चढ़ा हूं ये मुझे कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसको सांत्वना दिया जाए रो मां किंतु मैं इसको कहूँ कि नंद बाबा रोइए मत संसार में वही परम सौभाग्यवान है जो कि कृष्ण का चिंता का मनन करता है और कृष्ण के लिए उसके आंखों में आंसू आ जाए ये तो महाभाग्य का लक्षण है। नंद बाबा क्या कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं कृष्ण के विरह में रो रहे हैं मैं कैसे कहूँ ये तुम मत रो तो कृष्ण ने कहा कि सांत्वना दे आना मैं कैसे कहूँ रो कृष्ण के विरह में संसार का तो यही महाफल है जन्म लेने का जो कृष्ण कृष्ण का करके रोए कृष्ण की कथा करते हुए कोई रोता है तो उसके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है तो कृष्ण में जो तन्मय हो गया वही तो जीवन का सौभाग्य है नंद बाबा तो वही कर रहे हैं क्या कहूँ रो मत या क्या कहूँ जो रोइए जैसे रोगी कहता हूँ तो संतना नहीं, और जिसका कह वो मत कर तो ये साफ बता चाहिए कुछ नहीं, तुम पाप कर रहे हो, इसको मन मना मत कर। क्या अंत में मैं सभी ही बोलूँ सचमुच में इनका जीवन ऊंचा है तो भाग्यवान है, इसलिए कहे युवा भाग्य करो। प्राणी मात्र जगत में जितने हैं विश्व ब्रह्मांड में उनमें आप और भैया जो होगा हाँ परम सौभाग्यवान है, आपकी इस उत्तमता को भाग्य को जगत का कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। जो कृष्ण के लिए इतना अनुराग आज तक हमने बहुत देखा, किंतु अनुराग है। एक बात और, किसी को सांत्वना देना चाहिए तो उसमें उसके जैसा हो जाए। यदि कोई रो रहा है किसी के लिए तो हमारी आंखों से भी कुछ आंसू आए तब उसको शांत करना है। ऐसे भी यदि नंद बाबा के सामने कोई आकर के बिना रोए रह नहीं सकता, जैसा रो रो है कोई रो नहीं रही, या कुछ दो चार बातें सांत्वना की करेगा उधर समझ नहीं पाया कि मैं क्या सांत्वना दूं, और रो तो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दुर्भाग्य हूं, मैं जो मैंने गोपियों जैसा गोपों जैसा प्रेम नहीं रो सकता, किंतु सांत्वना क्या दूं। किसी को सांत्वना देने के लिए ये जरूरी है कि जिस विषय के लिए वो रो रहा है उसका मन थोड़ी दूसरी तरफ मिले ना, कोई अपने संतान के लिए रो रहा है हे भाई भगवान का स्मरण कर, ये ऐसा ही संसार है, इसका अतिरिक्त क्या सांत्वना देगा और फिर उसका मन दूसरी तरफ ले जाने के लिए सोचा है। किंतु उद्धव कहते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, इनका मन तो लगा हुआ कृष्ण कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इनको कैसे इनका मन हम दूसरी बार ले जाए, ये तो महापाप का कारण नहीं है सर। तो आपको क्या करूं, उद्धव कहते बुद्धिमान लोग नैतिज्ञ लोग भक्त लोग कुछ चिंता नहीं करते, सचमुच में तो वो महापाता है। मैं विचार करके देखता हूँ शास्त्र कहते हैं इसका सिर्फ बैठा इसे पहले बोले जगत में यदि माता पिता हैं और तो भाग्यवान है कोई तो आपके समान कोई भी नहीं है। नारायण अखिल गुरु, अरे कृष्ण नारायण है अपने जगत का गुरु है, सभी उसके पुत्र हैं और उसको अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं, सोचने लगे नंद बाबा इतने में सोचा अरे तुमने क्या कहा, मुझे तो भाग्यवान कहा, उन्हें रोना आता है तुम्हारी अकल का ऐसा नहीं हो। मैं सोचता था कि कृष्ण के साथ में रह करके चला चतुर बन गया, तुम्हारे आंखों के साथ ही नहीं छूटे हैं, अकेले नहीं आई। अरे संसार में जो सबसे बड़ा भाई दुर्भागा है और उसको तुम सौभाग्यवान कह रहे हो, तुम्हारी अकल कहां गई, सोचो तो जाए। तुम कह रहे हो कि कृष्ण अखिल गुरु जगत का गुरु नारायण है, आप उसको कुछ मान के रो रहे, मैं तो पहले यही समझता था क्यों मेरा पुत्र है और कुछ नहीं, इसे गिरा में निकल हो रहा था, मैं चाहता था कि मेरे प्राण निकल जाए, तो नहीं बड़ा निश्चुर है। ब्रह्मा जी ने इसे ब्रज देकर एक बारा बताया, पिता तो जगत में एकमात्र था वही कौन महाराज था, अपने पुत्र के जीवन में हाराम हाराम और फिर नहीं प्राण छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं समझता हूँ कैसे ब्रह्मा जी ने सुनाया। इसे ऐसा जो पागा व्यक्ति जो नारायण को भी अपना पुत्र समझ करके और अपने निष्ठुरता के कारण उसको खो दिया, भगवान तो वहीं रहते हैं जहाँ कोई प्रेम करे, तो शायद मेरे अंदर में प्रेम नहीं था इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया, जहाँ उसको प्रेम नहीं मिलता है लाड़ प्यार मिलता है इसलिए वो मरता है। उद्धव जी करने ले जाओ क्या करूं, वो समझाने की चेष्टा, देखो देखो तुम्हारा ये जो पुत्र है जिसको पुत्र मान रहे हो वो पुत्र नहीं है, ये विश्वास बीज जोनी बीज पुरुष है, प्रकृति जोनी है, दोनों से जगत की सृष्टि होती है। कैसे होती है? पुरुष उसमें इच्छा करता है, इच्छा के द्वारा प्रकृति को उद्वेलित करता है और प्रकृति जगत का प्रसव करती है। वो जो बीज और जोनी जो पुरुष और प्रकृति है इन दोनों का भी जो परम पुरुष है वो तुम्हारा पुत्र है। रामो सुंदर पुरुष बता ना वो पुरुष है कौन? राम और कृष्ण। तुम अपने उनको पुत्र मान बैठा उसके लिए रोक रहे हो तड़प रहे हो अंगे फूटे। और देखो तो सर्वत्र वो व्याप्त है जिसे विष्णु कहा जाता है, उसके अंदर में भी चली है, उसका अभाव कहीं नहीं है, सर्वत्र होगा। तुमने भी खड़क खंभ सर्वत्र उसके लिए रो रहे रोना किस लिए होता है? मोह के लिए। मोह कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा, तत्व का ज्ञान। मैंने सोचा उद्धव जी ने इनको तत्व का ज्ञान बतलाऊं तो इनका मोह दूर हो जाएगा। मोह दूर होने से होगा कि ये कृष्ण स्वयं भगवान है और इनको ज्ञान होने से वो मार भाग जाएगा, फिर अपने आप जीना चित्तार्थन भी दूर हो जाएगा। ये इनका भाव कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये पुत्र नारायण है और पुरुष प्रधान है और पुराणों का भी यही प्रतिपाद्य वस्तु है, वेदों का यही प्रतिपाद्य विषय है। आइए समस्त कारणों का कारण भी ये स्मृति जोनी है। हे महात्मन, हे नंद बाबा, ऐसा समझ कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर तुम बोलिए। नंद बाबा अब तक चुप थे, ब्रह्म ज्ञान सुन करके और उनके आंखों उनसे आंखों निकालने जरा बंद हो गया सुन करके और चढ़ गए और कहने लगे उद्धव तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, तुमने देखा नहीं है ना? थोड़ी सी छाछ के लिए मक्खन और रोटी के लिए जो मैं चलता था उसको जिस दिन में 10 बार खाता उसको तू भगवान करता है, बात बात में तो रोध करता था और उसको तुम करने की सम्मान। अरे भगवान तो वह जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जन्म मरण से अतीत है, जिसको क्रोध राग भय वेद कुछ नहीं, ये तो मिनटों मिनट में भूख इसको लगती है, मिनट मिनट में ये मचलता है मक्खन के लिए और मक्खन यहाँ अपने घर में पेट नहीं करता है, दूसरों घर में मक्खन चोरी करता है, ये ब्रह्म बुद्धि है। अरे उद्धव तुम क्या समझते हो? मैंने देखा ये बात बात में झूठ बोलता है, झूठ तो इसका चलेना है, झूठ बोलता है। अब हो सकता है ऐसा मैंने देखा है जो छोटा उतरो इसकी मैया उसको बैठा करके अद्भुत को रक्षा करने के लिए गई, गति मंथन कर रही थी और उनको शांति ला रहे और इतना तो गया कि वो मट्टी को ही तोड़ दिया, इतना तो इसको तुम ब्रह्म करते हो और भगवान करते हो, तुम्हारी बुद्धि पर हमें तरस आता है। ऐसा सुनते ही कहने की तो मैंने ये गलत कहा, ऐसा हमको नारायण दिखाई देते हैं बहुत इनका तो और देखते हैं कि विराह का ताप बढ़ गया। अंत में बोले जब देखा जी कोई उपाय नहीं, बाबा इतना व्याकुल मत हो, आगे में अति दीर्घ न कालेगा ब्रजम शक्ति अच्छु अपने बाप का पाप कर जो कहा है वो जरूर करेगा, बस आने वाला ही समझ आए अब धैर्य धारण कीजिए। प्रियम विधत् आपका प्रेषित तो पिता माता जो नंद और यशोदा जी ने आपका और प्रेमवासियों का दिरक्षा करते बचाने वाला दुखों से बचाने वाला ये कृष्ण जरूर आएगा, उसने प्रतिज्ञा की है। उसने कल को रंगभूमि में बिना आया से ही पछाड़ा मार्क्सिद्ध महाभाव आप विकल मत सुनो, इस प्रकार से कह करके और उनको समझा रहे हैं। और ऐसे करते 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 समझाते और रोते कलपते वो रात बीत गई। अब जब सवेरा हुआ तो नंद बाबा यशोदा जी के पास में चले गए और ये स्नान करके अंगिक इत्यादि करने के लिए नंद गांव के पास ही एक बहुत सरोवर है जिसका आज कल नाम है कृष्ण कुंड। बस वहां चले गए, स्नान किया है और स्नान करके अपने सिस्टम ध्यान में किस आज मन ही नहीं लगा। नंद बाबा का वह चेहरा उनके भाव का स्मरण आया, कहीं मैं रो नहीं पाता, रोना नहीं आता। नंद बाबा कहना किसके लिए रो रहे हैं? तो इसने उन्होंने देखा कि अद्भुत थी चाहे योग माया की बात है। देखा एक कदम तो कानन है, कदम प्यारी जिसको कहते हैं, उसमें देखा क्या कुरु भूखिया उदास बैठी तेरे टिके हो गए, बसन उनके मैले हो गए, इसलिए वो कपड़े नहीं घुराती जो ये कृष्ण संबंधी आंसू है और धुली की बैठती है, इसलिए वो से साफ नहीं कर प्रेम में सब जीवन हो सकते। मानो अब मरना करना है, एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे सभी एक सोने का रथ सभी देखा सवेरे, ये सोने का रथ कैसे आ गया नहीं जानती हो? अरे कम मारा गया है ना, उसका पिंड देने का तिरंगी दिन है आज, उसको पिंड देना। तो कंस को पिंड देने के लिए किसी तर्पण करने के लिए वहां कुछ शायद नहीं है, ब्रज में तो बहुत है ना, सारी गोपियां सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में मर गए होंगे और उनका ये है पिंड लेकर के उसका तर्पण इसलिए आया है। दूसरी तकलीफ होती है नहीं नहीं तो नहीं समझ, ये तो कृष्ण ने भेजा है, वह वही ग्रंथ है जिसमें अपूर्ण आया था और हमसे लेकर के चला गया, वो पूर्ण था, अब अपूर्ण नहीं है। तो सोने के रथ उस पर आया है, जानते हो किस लिए? एक सबकी और बोली थी जी, मैं जानती हूं, ये कृष्ण जब तक ब्रज में था चल रहा था, सोमों को चल रहा था, ब्रज की गठियां लेता था, उसके अलंकार फूलों के थे, सर्वत्र वो फूलों की सब माला और ये सब पहनता, अब तो हो गया है मथुरा का राजा, महाराज मथुरा पीछे हो गया। अपनी भैया को ये दिखाना चाहता है जहां मैं जो चल रहा नहीं रहा, इसलिए सोने के रथ पर बैठा करके भेजा जी, जाओ देखो जिसका नौकर सोने के रथ पर चलता है तो वो कैसा होगा, ये जौरव देख लाने के लिए उद्धव जी ने कहा तो मेरा रथ में आना था है। और फिर पृथ्वी दुखंडित हो जाओ, मैं उसके अंदर में समा जाओ, मुझे कभी नहीं आना चाहिए, कृष्ण ने बैठा दिया मैं क्या करूं, किंतु उसने नहीं सोचा और मैं गैला में वैजयंती माला देख सके क्यों। इसने कहा नहीं सखी और कुछ बात, हम लोगों से तो उसका कोई संबंध नहीं, मान तो है नहीं तो मानो न तो नहीं है, तो हमारा तो संबंध मानने के ऊपर नहीं निर्भर था, वो मानता था प्रियतम प्रियतम हम उनको मानते ठीक हो गया, गोपी जन बल्ल वो बल गोपियों का प्राण बल्ल था, तो ये मानने पर था, मानो तो मानो नहीं मानो नहीं मानो, हम उसकी कोई नहीं है और हमारा भी वो कोई नहीं है, किंतु यही तो मसीह भूल नहीं सकती, वो तो भूल जाता। तो देखो अब नंद बाबा का जो सोना भैया वो कभी भी भूल नहीं, क्यों नहीं भूल सकता, किंतु कृष्ण का शरीर ही जो सुधा नंद बाबा के रक्त से बना है, जैसे कल बतला रहा था शायद ये पर्सन, जैसे एक घट है, घट बनता है कुमार बनाता है और बनाता है मिट्टी से और फिर मिट्टी में चक्र की जरूरत होती है, चक्र बनाता है उसे डंडे से घुमा करके फिर बड़ा करके सूते से काट, घट ये कहे कि हमारा कुमार से सूते से चक्र से कोई संबंध नहीं है, मानने की बात है, कोई समझ किंतु जसोदा मैया को ये कैसे सुन लो। ये कातरणी बना उनके रक्त से, उनके दूध से छोड़े पर भी नहीं छूटेगा वो समझ। हाँ तो मैया को सांत्वना देने के लिए पूछो, देखो वो रास्ता नहीं है तुम भूल से आ गए, वो रास्ता उधर का है, उधर में तुम्हारी नहीं जाओ, उधर में जाओ उनको सांत्वना। हमारा संबंध तो टूट गया है जानते हो, मानो तो है जितने हम उसकी कोई नहीं। इतना कहते कहते हम निकल हो गई, इतने में एक दूसरी गोपी ने कहा देखो ये मालूम होता है ये कौन है, ये कौन है, सब दीक्ष कृष्णा विचारण भजन। एक गोपी कहते हैं मैं समझ नहीं गई ये कौन है, कौन है कृष्ण का अनुचर है, अनुचर है कृष्ण ने इसे भेजा, कैसे तुम कैसे समझ गई कि इनका अनुचर है। ओहो इसलिए पूछिए समझिए हमारी नाक अभ्रांत है, अभ्रांत माने क्या
भूल नहीं कर
जीवा बोल सकती है और मन चिंतन कर सकता है, इंद्रिया अपना अपना काम कर सकती है, वो उसमें भूल हो सकता है, देखने देखने आंखों में भूल किंतु हमारे नाके अभ्रांत। ये कृष्ण का अनुचर इसलिए कहती हूँ कि कृष्ण का कौन माना पहना है ये, और कृष्ण की वो सब जितने पोशाक हैं अलंकार है जितने पहना है, किसने पहन लिया है कि उसने पहना लिया ये मेरी समझ में नहीं आ, कौन पहनाया या पहन करके आया, किंतु अंतर गुरु है क्यों। देखो कृष्ण की जी भी वैजयंती माला पहना उसमें अपना सुगंध तो है, जैसे कि इसमें भी बड़ी सुगंध है किंतु कृष्ण के अंगों में ऐसी कोई सुगंध है मतवारी जो उस फूल को के सुगंध को भी ढक करके वो अपना परिचय देती है, जैसे कृष्ण को अंगों का मैं बनी। कृष्ण के साथ में बहुत दिन रही थी, एक साथ में छह दिन इसलिए उसके अंगों का अंगंध कैसा सुगंध होता मुझे याद है, इसलिए मालूम होता है कि कृष्ण की वैजयंती माला है और उसने क्या पहना दिया है और पहना करके भेजा है, तुम जरूर काम इतने में गोपियां ले गई सीता के पास और उद्धव जी ने देखा एक सोने की पुतली बड़ा सुंदर फूलों की शैया पर कमल के फूलों की शैया पर सोई हुई है, उनकी सहेलियों ने देखा जीवित है कि अब मर गई, शायद ये मर गए कृष्ण का दर्शन भी पाएगी आएगी जो नाक में रूप देकर के देखा भी जीवित है देखा। अभी कुछ कुछ प्राण हैं, कुछ कुछ इतने वो जो सो रही थी एकदम जैसे दिव्योन्माद में जो कोई पकने लगता है इधर उधर की बात ऐसे कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है ध्यान की कृष्ण संगमा, उसने देखा जो कृष्ण ने छोड़कर के जगतपुरी गए और वहां पर बिना स्त्री के चला नहीं सकते, वहां की स्त्रियों से मिले हैं और इसके बाद मिल करके हमारे पास में आए हैं, कहते कि मैं कहां क्या समझ लू, वो कहते अरे तुम्हारे अंगों में तो चिन्ह है जो वहां को गया था, कैसे छिपाए कृष्ण मान कर रहे हैं, मान करने के बाद में जब की नहीं मानी तो कृष्ण थोड़ी से दूर के लिए चले जाते हैं और वही क्षण ध्यान कर रही उनका समझा और अत्यंत मान हुआ मूर्खित है और उस मूर्खे में ही मान लिया और मान करके कहा जो कहने लगी थी उसको कहते हैं भर अधिक और समय अधिक हो गया और फिर हमको आना है बोलना है, अभी प्रसंग अभी 10 मिनट तक अभी और चल सकता है, बहुत विषम और बढ़ता जाएगा। वो कृष्ण उठा भी ठीक उसी समय उठा हुआ है जिस समय में उनका ध्यान कर रही है अंग संगम मां है, उस समय में बड़ा क्रोध है, बड़ा कुटिल है, ठोस है मन में आता है। उस समय में देखा ये कोई भावरा काला वही परकुटता हुआ राधा जी के चरण कमलों को कमल का फूल समझकर और उसके सुगंध से उठ करके राधा जी के अंगों में भी गंध है पैर की तरफ में मड़राने लगा। और इस समय राधा जी को जो मार भौरा कहां से आया मधुपुरी, अरे तू मधु पान करके मस्त हो गया है, मधु पकी तो बंद हो मनाने के लिए हमें उस काले ने भेजा है, तुम काले हो, तुम तो और दुष्ट हो, काला तो दुष्ट ही है, किसी काले को कोई आदमी पति दूर कर सकता है उससे अधिक दूर तो जरूर तो उसे भी छोड़ मधुपुरी माने मधु माने होता है मदिरा, मधुपुरी माने मधुरा मधु का भंडार माने शराब का भंडार। तू वहां से आया है मधु पान करके ध्यान नहीं है अपी पर हटो हमारे पैरों को छोड़ो, ये मनाने का लक्षण नहीं। तो कहां से समझे जाते तो मनाना कहते हो, अरे तू अपने गोठों पर पीला रंग तुमको कहां से धारण कर दिया, हाँ ओ तुम प्रेम सुना होगा मधुरी पर सुरी में अपने से एक मालिनी के पास में ग्रहण मनाने के लिए, और जब उनका आलिंगन किया तो उनका कुमकुम कृष्ण के माला पर लगा तो उसी माला पर बैठा होगा, इसलिए कुमकुम लेकर के हमको मनाने यही मनाना है। और अभी मूर्ख तुम्हारा जैसा मणि मणि मैंने मारी जैसा है वैसा तू भी हो काला है पीता जानते हो उसको अकल नहीं है ये कहां पर आना चाहिए कहां पर नहीं, जैसे भ्रम सुन तुम है काला उसको भी ज्ञान नहीं, यदि वो वहां के जातों को मालूम हो जाए कि हमारी पत्नियों से ये प्रेम करता है क्या करेंगे, हथियार उठा देंगे विद्रोह कर देंगे और उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ये जिसको ज्ञान है उसका दुरुस्त कर हमारे मन में इस प्रकार से बड़ा करने और अंत में इसका जो वर्णन है उसको करना, इसके बाद में उद्धव जी का कुछ संवाद आएगा और इसके बाद में उद्धव जी से मिलोगे, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही हृदय भाव भी है श्रीमद भागवत का यह प्राण है कि जैसे कभी समय मिलेगा उस समय से बुनाएंगे मैं आकर के कुछ प्रकार
कल्पतरुभ्यश्च कृपास्तु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्मै प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् बतलाया भरत जी सम्माताओं वशिष्ठ जी और वहां के समस्त चतुरंगड़ी सेना को लेकर चित्रकूट में पधारे। वहां पर पधारे तक इस रूप में देश में जब उन्होंने सुना श्रृंगेरपुर में रामचंद्र जी जटा पहने हैं जटा और केस को बांध रखे हैं खड़ा हूँ और कुछ भी पैरों में नहीं है, वनवासियों का देश है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनका सेवक हूँ। वो राजा बन करके चले हाथी घोड़ों पर और राजकीय वेशभूषा में हो ये चीज नहीं उचित। उन्होंने वो सब छोड़ दिया, केस पर जटा बना ली और वनवासी जैसे वस्त्र है वो धारण किए, अब पैदल ही चल करके चित्रकूट में। जब चित्रकूट में आए मंदाकिनी के तट पर, तो वहाँ पर देखा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहीं पर स्नान करते हैं। वो वहीं पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ पर वनवासियों के साथ में यहीं पर बैठते हैं। वहाँ पर वो ऐसे रो रो करके वहीं पर लौटने लगे और फिर रामचंद्र जी के पास में गए तो एकदम प्रेम में अभीर हो करके वहाँ पर रोने लगे। लक्ष्मण जी ने उसके पहले सुना कि वो तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में आ रहा है, ताल के या किसी पेड़ के ऊपर में चढ़ गए और देखा जी भरत सब चतुरंगड़ी सेना के साथ में आ रहा है, घोड़े हाथी सवार सब है, इसकी क्या जरूरत थी, जरूर राम से युद्ध करके मारने के लिए आ रहा है। बस दौड़ करके राम से बोले कि मैं आज भरत को एकदम मार करके रहूंगा, कोई उसका एक भी सैनिक बच नहीं रहेगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज जरूर मरना है। बोले ये भावावेश में काम मत करो, इसे पछताना हो उसको आने दो, देखो ये क्या करता है। जब वो आए और उनके चरणों में गिर करके रोने लगे तो इनका संदेह दूर हो गया। तो भरत जी के चरणों में गिरे, बोले जी हमारा अपराध क्षमा कर, मेरी भावना बहुत अशुद्ध थी, मैं आपको मारना चाहता, तुम मारा क्यों नहीं, तो काम ही बन जाता। फिर मिले, माताएं आई मुझसे मिले, पिताजी मिली, और इसके बाद में कुछ दिन तो विश्राम हुआ। राम ने उनको विश्राम कराया, उनसे कुशल प्रश्न पूछा, अयोध्या का कुशल है सब कुछ ठीक है, पर अयोध्या का कुशल जहाँ आप नहीं वहाँ पर कुशल क्या हो सकता है। पिताजी हाराम हाराम और हाथ आ करके इस लोक से चले गए। मैं कहते हैं कि गर्भ से क्यों जन्म लिया मैं, और जन्म से ही मर के नहीं गया, या वही क्यों नहीं मर गई, उसको दोष देने लगे। राम ने कहा मेरा शपथ है मैया के कई से निंदा मत करना, उनके प्रति शुद्ध भाव न रखना, एक बात याद रखिए, निंदक नियरे रातिये आंगन कुटी छवार, यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसे देश मत करो, उसे अपनी कमियां मालूम हो जाएंगी, इसलिए निकट में रखो। ये हमारी कमियों को हमसे दोषों को त्रुटियों को सूचित करता है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में उसे व्यवहार करो, और वो करता है। जैसे राम महाप्रभु जी रामचंद्र पुरी का व्यवहार, अन्य हिसाब जैसे भक्ति नष्ट हो जाए, ऐसा कोई भी काम ना करो जिसे दूसरों के उद्वेग हो और फिर अपना उद्वेग मत करो। किंतु मैं बहुत समझाने पर भी लोग नहीं समझते हैं, ऐसा कोई भी काम मत करो जिसे दूसरे को उद्वेग, प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए, इसलिए उद्वेग मत दो नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाए। ये होता है किस लिए, होता है किस लिए, कारण इसका है, जापों की इच्छा रहे और दूसरे कुछ कहें क्रोध हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोगों से मधुर व्यवहार नहीं रख सकते। इसलिए ये सब शास्त्रों की बातों को मान करके खूब गभीर रूप से सब करके विचार, खूब गभीर विशेष करके गुरु की बात को ऐसे पैसे उड़ा मत देना, इस विषय में आप कुछ नहीं जानते हैं, अनुभवी मत कहो, बिना विचार के हुए मस्त नस्तक करके बात करो, यदि भजन करने की लगता है कभी मत। फिर तो आज कभी काल जो सब कुछ भी परिचल, तुम लोग सावधान रहो, इधर दूसरा कोई हमारा अपकार करता है तो भी तुम उसको अपकार मत करो, इस तरह से चौदह। अंत में दूसरे दिन रामचंद्र जी ने पिताजी के लिए सुन करके जो हमारे पिताजी पर रोग सिखाया और उनको चरण प्रदान किया और इमली होती है इमली का बीज उसको पीस करके पत्थरों पर पत्थर देकर और उसका पिंड बनाया और उसको भैया इलाज करने लगी कोशिश किया। आज जो समस्त पृथ्वी के अधीश्वर थे महाराज दशरथ और उनका सबसे समर्थ बेटा राम आज अपने पिता को पिंड देने के लिए इंगुति दे रहा है। मैं क्यों देख रही हूँ मत क्यों नहीं जा विराग करने लगी। सबने समझाया ये सब वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में या बड़ा हृदय था तो उसी जाति ने तो कुछ समझ करके मर्यादा पूर्वक किया। वाल्मीकि रामायण में एकदम ऐसा किया है जैसे वो साधारण से साधारण व्यक्ति हैं और साधारण भाव हृदय को स्पर्श किया ऐसा। फिर राम ने कहा उससे पूछा भैया हमारी जाते बलकल बसन पहन करके सिर पर जटा रख करके खाली पैर पत्थर नोकीले और सब उसमें ऐसे चल करके आए क्यों आए